जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
था नहीं मिलती जीवन की लहरों से ही रही खेलती चंचल मछली मेरे मन की स्वल्प ज्ञान की गुनिया हल्की कैसे बुझे बात अतल की जल में लीन न होने देती लोह काट की नैया तन की व्यर्थ हुई सिद्धांत समीक्षा मिले नहीं गुरु मंत्र न दीक्षा आज और कल और दिखती रंगत मिट्टी के कण कण की। यहाँ स्नेह से स्नेह न मिलता, सत्य फूल बन स्वप्न न खिलता। स्वार्थ बन गया स्वामी, भूली बुद्धि थकी चेरी। शन शन की थाह नहीं मिलती, जीवन की लहरों से ही रही खेलती मछली मेरे मन की। कवि कहता है कि मन उस मछली की तरह है जो केवल सतह पर जी रही है, सुपरफिशियल एग्जिस्टेंस। वो केवल ऊपर ही ऊपर खेलती रहती है, और जीवन के जो गहराई के प्रश्न है, जीवन के जो रहस्य है, जीवन की जो गूढ़ बातें हैं, उस तक वो पहुंच ही नहीं सकती। स्वल्प ज्ञान की गुनिया हल्की, कैसे पूछे बात अतल की। पुराने जमाने में गांवों में छोटे तराजू होते थे, उन्हें गुनिया कहते थे। इस छोटी सी गुनिया में बड़े बड़े वजन कैसे तोले जाएंगे। स्वल्प ज्ञान की गुनिया हल्की, कैसे बुझे बात अतल की। जीवन बेबूझ पलिस पहेली जैसा है, और इस पहेली को अगर बुझाना है तो ये छोटी सी गुनिया काम नहीं आएगी स्वल्प ज्ञान की। जल में लीन न होने देती लोह काट की नैया तन की। और उस बीच और एक बाधा है, और वो बाधा है शरीर की। शरीर की अपनी सीमाएं हैं, शरीर की भूख, शरीर की प्यास, शरीर को आराम, ये सारे बंधन हैं लोह काट की, लोहे की और लकड़ी की। ये नैया है शरीर, और इस शरीर के वजह से मन उस जल में लीन नहीं हो पाता। व्यर्थ हुई सिद्धांत समीक्षा। कितने सिद्धांत, कितने शास्त्र, कितनी किताबें, कितनी बातें, कितने शब्द हैं, पर ये सारा एनालिसिस, ये सारी सिद्धांत की बातें व्यर्थ हुई। जब तक गुरु मंत्र न मिला, जब तक दीक्षा न हुई, जब तक कोई सी चेतना सामने बैठकर ज्ञान न समझाए, ज्ञान हमारे बुद्धि तक न पहुंचाए, तब तक कुछ समझ नहीं आता है। आज और कल और दिखती रंगत मिट्टी के कण कण की। और ये संसार बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। आज कुछ, कल कुछ, अचानक कुछ भी हो जाता है। यह स्नेह से स्नेह न मिलता, सत्य फूल बन स्वप्न न खिलता। संसार में लोग जिसे स्नेह कहते हैं, वो स्नेह कभी था ही नहीं, वो मोह या तो फिर वासना। स्वार्थ बन गई स्वामी, और बुद्धि थकी चेरी शन शन की। बुद्धि जैसे दासी है, और स्वार्थ मालिक है। था नहीं मिलती जीवन की, लहरों से ही रखेलती चंचल मछली मेरे मन की। तो कवि कहता है, गहराई से प्यार हो, जो घटनाएं घट रही है उन्हें हम आर पार देख सके, उनमें छिपे रहस्य को जान सके। जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसलिए आज बाबा ने कहा स्वचिंतन और स्वचेकिंग आवश्यक है। जैसे भोजन के लिए समय निकालते हो और जैसे आराम के लिए समय निकालते हो, और जिस दिन आराम नहीं होता तो फिर मन में एक ही संकल्प रहता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे नींद करना है, मुझे नींद करना है। जैसे इसकी चिंता है नींद की और भोजन की, उसी तरह अब कौन सी चिंता हो तुम्हें, सो के चिंतन की, सो के चेकिंग की। शरीर भी एक बंधन है, इस बंधन से भी पार चले जाओ। शरीर की लिमिटेशंस, लोह काट की नाव तन की, ये शरीर एक नाव है और वो कई बार बीच में है खड़ी है। उस अतल की गहराई को हम नहीं जान सकते, इसलिए इस शरीर में कम से कम ठहरने का पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ कौन सा है? शरीर से बाहर रहने का पुरुषार्थ। जितना शरीर में रहेंगे उतना शरीर की बातें याद आती रहेगी। तो तीन सिद्धांत आज है, तीन सूत्र। सबसे पहला, अपने आप को क्या समझो? अवतार। जैसे बीज होता है, धरती की गोद से बाहर निकलता है, फिर वृक्ष बनता है, उसी तरह आत्मा परम धाम से इस धरती पर आती है। तो रोज अमृत वेला, अवतरण रिचुअल, अर्थात मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ। किस लिए? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और जो अवतार होता है उसे निरंतर याद रहता है वो किस लिए आया है, क्यों आया है। सबसे पहला सिद्धांत अवतार। दूसरा अटेंशन। टेंशन और अटेंशन, बाबा ने कहा टेंशन रात है और अटेंशन दिन। जहां अटेंशन है वहां टेंशन हो नहीं सकता। सजगता, सतर्क, क्योंकि चीजें जैसी दिखाई दे रही है वैसी है नहीं। यदि किसी से दिखाई दे रहा है था प्रेम मिल रहा है, हो सकता है प्रेम के पीछे कोई स्वार्थ छिपा है। और हमारी मोहांध आंखें वो देख नहीं पा रही। हर पल सतर्क, हर पल सजग। ये सजगता, ये जागरण, कल बाबा ने कहा था यही शिवरात्रि है। आलस नहीं, अलबेलापन नहीं, बहाने नहीं, इस नींद को तोड़ना ही शिवरात्रि है। जागरण ही अध्यात्म है। अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। और तीसरा स्वचिंतन। स्व को देखो, स्व की चेकिंग करो और पश्चाताप यही कर लो, ताकि बाद में फिर करना ना पड़े। स्वयं स्वयं को क्या करो, क्या करो? जगाते रहो नहीं, सजा, पनिशमेंट। तो ये तीन बातें हैं, स्वयं को क्या समझना है? मैं अवतार हूं। तो जो भी लौकिक कार्य है, छोटे छोटे कार्य है, वो सब क्या बन जाए? अलौकिक। साधारण क्या बन जाए? असाधारण। महान बनना अर्थात असाधारण कर्म करना नहीं, जो साधारण कर्म है उनमें ही दिव्यता भरना। ये है महान बनना। बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप फूड कैरी वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉप फूड कैरी वाटर। ज़ेन कहावत है, जब ज्ञान नहीं था तो क्या कार्य करते थे, जंगल में जाता था वो व्यक्ति, लकड़ियाँ काटता था, लकड़ियाँ लेकर आता था, पानी भरता था। अभी अचानक जागरण हो गया, अचानक एक दिन बोध हुआ, संबोधि प्राप्त हुई, एनलाइटनमेंट हुआ, पर कार्य कौन सा कर रहा है, वही आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉप वुड कैरी वाटर। कार्य वही है साधारण, वही दिनचर्या के कार्य। एनलाइटन्ड व्यक्ति हमारे ही बीच में कहीं बैठा है, परंतु भीतर से, ऊपर से सब सेम है, पर भीतर से चेतना बहुत ऊंचे तल पर कार्य कर रही है, किसी ऊंचे आयाम में जुड़ी हुई है। तो अपने आप को क्या समझना है, अवतार, और अवतार की क्या विशेषता है, कृष्ण अवतार अगर ले लिया जाए भक्ति मार्ग में कैसा होता है, वो गोकुल उसने छोड़ दिया, उसके बाद में बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाया, डिटैच्ड। सुदामा पूछता भी है सांदीपानी आश्रम में कि मुझे तुम्हारी वो बांसुरी सुननी है, कृष्ण क्या कहते हैं कि वो तो मैं छोड़ चुका हूँ, वो बचपन की बातें थी, अभी उसके कोई लेना देना नहीं, डिटैच्ड। जिन गोपियों के साथ वो रहा, उसके बाद में महाभारत में कहीं वर्णन ही नहीं है कि वो वापस गया गोकुल, डिटैच्ड। तो अवतार डिटैच रहता है, वो कभी शोक करते हुए देखा क्या उसको, दुखी होते हुए, रिग्रेट करते हुए, पश्चाताप करते हुए, वो कैसा है, लीलाएं कर रहा है, आनंद मगन अवस्था में, चाहे कुछ भी हो रहा है बाहर, और वो त्रिकालदर्शी है, वो आर पार सब कुछ देख लेता है, उसे सबके विषय में सब पता है, सब पता है कर्ण कौन है, सब पता है भीष्म का क्या होने वाला है, पहले ही पता है, दुर्योधन का क्या होने वाला है वो भी पता है, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, परंतु अवतार निरंतर साक्षी स्थिति में रहता है, अवतार निरंतर उपराम रहता है, अवतार निरंतर अनअटैच्ड। इंग्लिश लिटरेचर में अनासक्ति के लिए डिटैचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जितना भी लिटरेचर है सब जगह शब्द प्रयोग कौन सा है, नॉन अटैचमेंट, नॉन शब्द डाला है उसमें, अटैचमेंट नहीं, ऐसे फोकस किस पर है, अटैचमेंट नहीं पर। डिटैचमेंट शब्द भी डाला जा सकता है, परंतु अधिकतर अंग्रेजी साहित्य में शब्द जो प्रयोग किया गया है, अटैचमेंट, डिटैच, नॉन अटैचमेंट शब्द प्रयोग किया गया है। गीता के जितने ट्रांसलेशंस हैं उसमें भी नॉन अटैचमेंट शब्द ही डाला हुआ है। तो अवतार कैसे होता है, डिटैच्ड। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कल की अव्यक्तवाणी, ये है डैश भाषा, पुरानी भाषा, पुराना गीत। अभी तुमको कौन सा गीत गाना है, नया गीत, वो कौन सा है मनी भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये है नया गीत। कोई रिग्रेट नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, जीवन बह रहा है, चल रहे हैं, और जीवन बहुत अनित्य है, बहुत 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 अनित्य, कब क्या हो जाए पता नहीं। आज सुबह लगभग 3 बजे हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर रम्या बहन, अचानक उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा, GGRC में थे अहमदाबाद, सुखदेव भाई, रघु भाई जो मधुबन में सेवा करते, उनको लेके गए, कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और मौसम आबू का ठीक नहीं था, इसीलिए कुछ समय से GGRC में रह रहे थे। कमज़ोर थे, कई बार एडमिट हुए थे, वैसे ठीक हो रहे थे और उनकी एक इच्छा भी थी कि मधु बनाना है। आज सुबह अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया घर पर ही। तो जीवन बहुत अचानक के पेपर आते हैं यहाँ पर, इसलिए तैयारी, एवर रेडी। तो 2 मिनट के लिए उस आत्मा को हम शांति की किरणें देंगे। तो आज का पहला सूत्र, मैं क्या हूं? अवतार हूं। रात को सोते समय वापस परम धाम, और सुबह उठते ही मैं परम धाम से अभी अभी आई हूं। किस लिए आई हूं? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आई हूं। तो जो भी साधारण कर्म है वो क्या हो जाए? असाधारण। लौकिक क्या हो जाए? अलौकिक। स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द मटेरियल। जो जो मटेरियल है, जो जो लौकिक है, भौतिक है, पार्थिव है, जो जो मंडेन है, उन सब क्या? स्पिरिचुअलाइजेशन। तो ये सबसे पहला कार्य। दूसरा कार्य निरंतर क्या हो? अटेंशन। किसके ऊपर? स्वयं पर। जो क्राइम होते हैं संसार में और जो आरोपी का पता नहीं चलता है किसने खून किया है, मर्डरर कौन है, तो जो भी संदेह के दायरे में होते हैं उनका क्या किया जाता है? उनके फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं कि फोन कहाँ जाके बंद हुआ, जो मृत व्यक्ति है उसका किस किस से उसकी बातें चलती थी, तो सारे क्या निकाले जाते हैं? कॉल रिकॉर्ड्स। सोचो यदि हमारे फोन के कॉल रिकॉर्ड्स, फेसबुक पर किससे बातें हुई थी, सोशल मीडिया में क्या क्या किया था, वो सब कुछ बड़े स्क्रीन पे दिखता है पुलिस को, और ये केवल उन्हीं को दिख सकता है क्योंकि उनके पास अधिकार होता है, बाकी लोग नहीं निकाल सकते। ये क्या क्या मैसेज किए और किस किस के कॉल किया और कितना कितना देर बात किया, सब दिखता है ये इस दुनिया में। इसमें थोड़ा फॉल्ट हो सकता है, पर बाबा क्या कहते हैं हमेशा, मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है, उसमें तो तुम्हारे संकल्प भी जो चल रहे हैं वो भी दिखाई देते हैं। तुम्हारे मैसेज तो बहुत दूर की बात है, मैसेज तो दिखते ही दिखते, एक एक जो मैसेज भेजा, कितने बजे कॉल आया, कितने व्यक्ति से, इन दोनों का कितने देर संपर्क रहा, मरने से पहले, मोबाइल बंद होने से पहले किससे बात हुई थी और किस एरिया में मोबाइल बंद हुआ, वो भी पता चलता है कॉल रिकॉर्ड्स। तो अपने कॉल और अपने मैसेज, इसका भी क्या करना है? हाँ, कितना भी यहाँ क्लियर द हिस्ट्री करो, 24 आवर्स की, 7 डेज की या फॉरएवर वाली, क्लियर कैश है, क्लियर हिस्ट्री, फिर भी सारा रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक मैसेज, एक एक फोन कॉल्स, सबका डिटेल्स निकालो, कच्चा चिट्ठा पुलिस निकालती है, उनके खबरी होते हैं, वो जो खबरी होते हैं ना, बहुत साधारण से व्यक्ति होते हैं, ऐसे गांव में घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, और अचानक पुलिस उसको मिलती है, वो लोगों को भी नहीं पता ये पुलिस का खबरी है, और वो पूरा निकाल के लाता है, एकदम आर पार वाली इंफॉर्मेशन जो किसी को पता नहीं, ऐसी एकदम गहरी बात पकड़ के लेके आते हैं खबरी, और पुलिस को देते, और पुलिस फिर उनकी जेब में 50-100 रुपये डाल देते हैं, खुश भी हो जाते हैं वो, यही उनका काम है खबरी। वैसे माया के CID बाबा क्या कहते हैं, बाबा के पास भी ऐसे खबरी है, हम कितना भी छुपाए फिर भी छिप नहीं सकता। किसी चर्च में एक पादरी थे, और आज उपवास का दिन था, संयम का, द डे ऑफ एब्स्टिनेंस। हाँ, जूस पीना अलाउड था, तो वो पादरी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जूस ऑर्डर करते हैं, पीते, उनके बाजू के मेज पर एक युवक बैठा है, और जो चर्च में आने वाला नियमित है उसी मंडली का है, और वो देखते हैं कि वो मांसाहार कर रहा है, कौन से दिन, डे ऑफ एब्स्टिनेंस, जिस दिन संयम का दिन है, उपवास का दिन है। इससे पहले कि पादरी कुछ पूछे, वही युवक कहता है, कहीं आपको आश्चर्य नहीं तो नहीं हो रहा है मुझे यहाँ देखकर? पादरी कहते हैं, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है शायद तुम भूल गए हो कि आज एब्स्टिनेंस का डे है, संयम का दिन है, उपवास का दिन है। वो कहता है, ना ना मुझे तो पूरा याद है कि आज एब्स्टिनेंस डे है। फिर पादरी कहता है, अच्छा, हो सकता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है कि तुम ये खाओ। वो कहता है, ना ना मैं तो एकदम सही हूं। और तब पादरी ने क्या किया होगा, क्या किया होगा? वो भगवान को धन्यवाद कहता है, प्रभु कमार है इस वर्तमान पीढ़ी की, वो कम से कम अपने पाप तो नहीं छिपाते। उसमें भी उसने क्या देखा, एक पॉजिटिविटी देखी कि इनसे मुझे कितना सीखना चाहिए, अगर कोई दूसरा होता तो अपने पाप को छिपाता, पर ये देखो वर्तमान पीढ़ी जो खुलेआम कह रही है, छिपा नहीं रही है। जो जैसा भीतर है उसको वैसा सब दिखता है। क्या कह रहे थे, टेंशन निरंतर, क्या अटेंशन, और चेकिंग किसकी, खुद की, चिंतन किसका, खुद का, अपने जीवन का, हम कहाँ हैं इस समय, क्या हमने पाया, या हम जो कुछ कर रहे हैं इसलिए तो नहीं कर रहे ताकि दूसरों से हमें प्रमाण पत्र मिले, वैलिडेशन मिले, कहीं ना कहीं जो हम करते हैं उसके पीछे एक सूक्ष्म दिखावा छिपा होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इसको कहते हैं। जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है ना, तब तक एक्साइटमेंट हो जाती है, तब व्यक्ति क्या करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे सामने करता है, क्यों, ताकि लोगों को दिखे कि हम है। बाद में गायब, जैसे हॉस्पिटल में भी कई बार पेशेंट आते हैं, गरीब पेशेंट आते हैं, बहुत गरीब, इतने सारे लोग आ जाते हैं पहले दिन मिलने, कुछ भी करो इसको बचाओ, कोई चिंता मत करो पैसे की, जो करना है हम करें, बहुत सारे लोग आ जाते, पॉलिटिशियन ये वो। पेशेंट 10 दिन रहता है जब डिस्चार्ज होता है, और जब बिल का समय होता है तब सब गायब, कोई भी नहीं वहां पर। कहां गए वो सारे लोग जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे? तो यही स्वभाव है, यही संसार। इसलिए अटेंशन, इसलिए स्व चेकिंग करते रहना, स्वचिंतन करते रहना। जैसे भोजन आवश्यक है और भोजन नहीं मिला तो चिंतन चलता है, नींद पूरी नहीं हुई तो हमेशा मन में रहता है कि कल रात मेरी 1 घंटा नींद हुई, आज मुझे नींद करना है, आज मुझे नींद करना है, आज मुझे नींद करना है। कुछ भी करके व्यक्ति सोचते रहता है। उसी तरह बाबा ने क्या कहा, जैसे उसको महत्व देते हो वैसे इसको भी महत्व दो। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मुरली में क्या कहा है, हाँ, डबल लाइट स्थिति, और क्या कहा, उसका बल मिलेगा। तो आज 3 सूत्र है। पहला, शांतिधाम से अवतरित हुई है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। रोज अमृत वेला ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं शांतिधाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए है। रात को कर्म करके शांतिधाम में चले जाओ तो अवतार अवतरित होते हैं, ये है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनका जन्म नहीं कहते, उनका अवतरण करते, प्रगट्य, क्या कहते हैं उसको, प्रकट होते हैं वो। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शीतल काम अति पावन काल अति शीत नगामा, तेही काल जगत विश्रामा। श्री राम का अवतरण कैसे दिखाया है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, उसका वर्णन है, ये नक्षत्र था, ये ऐसा था, ये वैसा था। जब संसार आराम कर रहा था तब विश्व को आराम देने के लिए राम अवतरित हुआ। तो अवतार क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। अवतार अर्थात वो जन्म नहीं लेते हैं, क्या होते हैं, प्रागट्य, उनका क्या होता है, प्रागट्य होता है। विप्रसंत सुरधेनुहित प्रभुदरी विविध शरीर, वो आता है जगत कल्याण के लिए, परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृतम। आई डिसेंड अर्थात मैं अवतार लेता हूं। तो उनको पहले से ही पता है, अवतार अर्थात उसको पहले से ही पता है कि मुझे क्या क्या करना है, पहले से बचपन से ही जागृत है। कोई एक होता है कि जीवन, आधा जीवन तो बेहोशी में गुजरता है और फिर धक्का लगता है और फिर जागते हैं, पर अवतार अर्थात उसको पालने से ही पता है मुझे क्या करना है। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते लेकिन आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हो, फर्क हो गया ना, चलते हो लेकिन आप फरिश्तों की चाल चलते हो, डबल लाइट स्थिति में चलते हो, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। जन्म कर्म च दिव्य च, हे अर्जुन, गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों अलौकिक, साधारण व्यक्तियों जैसे नहीं है। जन्म कर्म च दिव्य च, उसी तरह हम भी कौन है, अवतार, हमारा कर्म हमारा जन्म अलौकिक। अगला, रोज अमृत वेला सारे दिन के लिए अटेंशन रखो, स्व की चेकिंग करो। सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है, सदा चमकता है व कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा नॉलेज का सितारा चमक गया तो अभी पूछ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या, अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहो तो वह एक रस जलता रहेगा, घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज की चमक भी कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेला सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। अटेंशन रहता भी है लेकिन और डैश करो, क्या करो उसको अंडरलाइन, अर्थात अंडरलाइन करना अर्थात क्या, बार बार याद करना, जहां अटेंशन होगा वहां किसी भी प्रकार का डैश नहीं हो सकता। टेंशन जैसे रात होती है तो दिन नहीं हो सकता, टेंशन है रात, अटेंशन है दिन, तो दिन और रात दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध होता है अटेंशन नहीं है। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी क्या है अंतर, संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो पाप के गुण व शक्तियां है वह सब वह अपने में है। तो दूसरा सिद्धांत क्या है, बार 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 अटेंशन। और तीसरा, अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो कि बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन करते हैं। इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेला बनाते। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है, वह कभी भूलते ही नहीं। आराम करना यह निजी कार्य, अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा, चिंतन चलेगा भी और सबको सुनाएंगे भी कि मेरी रात को नींद कम हुई है, इसलिए मुझे अभी तुरंत जाना है सोना है दोपहर में, और आज ज्यादा सोना है, या तो आज जल्दी सोना है क्योंकि कल रात में पूरी रात जागा था। जैसा 3-4 लोगों को जब तक बताते नहीं तब तक कलेजे को शांति नहीं मिलती है। आराम करना या निजी कार्य, अगर एक दिन भी 2-3 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा, नींद कम की। वास्तव में नींद की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नींद अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। फिर वो ये नहीं देखती तुम योग में बैठे हो, वो ये नहीं देखती कि संदली पर बैठ के योग करा रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं। एक भाई थे जो अमृत वेले संदली पर बैठ के योग करा रहे थे, पर नींद का प्रकोप इतना ज्यादा था कि वहीं से गिर गए और सीधा अमृत वेला ही एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा था। क्योंकि नींद ये सब थोड़ी देखती है, खाते खाते भी कई लोग सो जाते अगर नींद ज्यादा हो तो। आराम करना नहीं है निजी कार्य, अगर एक दिन भी 2-4 घंटा आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा, नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो वैसे डैश और डैश, इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण डैश आता है। स्वचिंतन स्व की चेकिंग, उसके कारण क्या आता है अलबेलापन। पहले वह आवश्यक समझते हो यह नहीं, अमृत वेला रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। तो अमृत वेला ही प्रोडक्टिव टाइम है, सुबह का टाइम कौन सा है प्रोडक्टिव, उसमें जितने हम उत्साहित रहते दिन भर उतना नहीं रह पाते। इसलिए जीवन में जो परिवर्तन करना है उसका चिंतन कब किया जाए, मॉर्निंग अमृत वेला। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को डैश दो, गिफ्ट दो, सौगात दो, टोली दो, ब्रह्मा भोजन दो, सजा दो, या दो सजा दो, जो सबसे प्यारी चीज व कर्तव्य लगता है उससे अपने को किनारा कर दो। एक दिन के लिए मोबाइल बंद, पश्चाताप करना चाहिए, अभी पश्चाताप करेंगे तो फिर पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज अमृत वेला अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो, एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे अमृत वेला उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम का अपना को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, फिर रात को, सिर्फ रात को नहीं, बार बार अटेंशन के डैश रखना है तो वह पहरा देते रहेंगे। अटेंशन के कौन, चौकीदार को तैनात करो। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है बार बार डैश अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो इसलिए अलबेले हो जाते हो, कोई कड़ा नियम बनाओ। क्या कह रहे बाबा, स्ट्रिक्ट नियम, कोई व्रत, जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त तो हो जाएगा। जैसे साकर बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर, पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। कौन सी धरती? कितना नया शब्द है, धरती को चेंज, मन की, इसमें लिखा तो नहीं है ऐसा, धरती धरती भी हो सकती है धरा। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इन आराम के संकल्पों के डैश को छोड़ो, डनलप, करना ही है यह मस्तक पर सदा स्लोगन्स याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो आज चार कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य रियलाइजेशन कोर्स प्रैक्टिस, इसमें एक लाइन है, मैं शांति धाम से श्रेष्ठ करने के लिए अवतरित आत्मा हूँ। इस लाइन को 11 बार लिखना है। कौन सी लाइन? मैं परम धाम या शांति धाम से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित आत्मा हूँ। रियलाइजेशन प्रैक्टिस। दूसरा अवतार, एक परम धाम का चित्र बनाना है और उसमें से मैं आ रहा हूँ नीचे, हाँ ये परम धाम, ये उतर रहा है धरती पर, कौन? अवतार, स्टार, मैं हूँ वो अवतार। और जब एक अवतार आता है तो क्या होता है? हलचल होती है धरती पर, कुछ कुछ दिखाते हैं, एकदम बारिश या तो कुछ कुछ बादल या तो कुछ तो होता है, बिजली कड़कती है। शिलू बहन जी से किसी ने पूछा था, जब शिव बाबा आते हैं तो ये डायमंड हॉल की छत क्यों नहीं टूटती? भक्ति में तो दिखा है यदा यदा ही धर्मस्य, कैसा वो आवाज आता है, एकदम पूरा एकदम हलचल हो जानी चाहिए, भगवान धरती पर आ रहा है। तो बहन जी ने कहा था बार बार उसको रिपेयर कौन करेगा, क्योंकि वो तो हर 15 दिन में तो भगवान कहाँ उतर है, तो हमें भी एकदम शांति से आना है रिपेयरिंग चालू है। तो मैं अवतार हूं, परम धाम से आया हूं, ये पहला। दूसरा अवतार का ड्राइंग। तीसरा अलौकिक एक्शन लिस्ट, एक तरफ इधर कुछ कॉलम बनाने, जैसे खाना पीना उठना चलना, ये सिंपल एक्शन है, इनको अलौकिक कैसे बनाया जाए, चलने को अलौकिक कैसे बनाया जाए। तो मैं फरिश्ता हूं उसके साथ जोड़कर, या और कुछ उसके साथ जोड़कर अलौकिक, मैं कहीं जा रहा हूं तो क्यों जा रहा हूं, ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, ये ढूंढ रहा हूं तो क्यों ढूंढ रहा हूं। और लास्ट है अटेंशन वर्सेस टेंशन, एक तरफ लिखेंगे दिन, एक तरफ रात, तो दिन है अटेंशन और रात है टेंशन, जहां अटेंशन होगा वहां किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। तो आज के ये चार ग्रह कार्य, पहला 11 बार लिखना है मैं अवतार हूं, दूसरा अवतार का चित्र बनाना, तीसरा कार्य एक लिस्ट, चार पांच कार्य और उसको अलौकिक कैसे बनाया जाए, और चौथा एक चित्र, कौन सा? सूरज और चांद, सूरज है अटेंशन, रात है टेंशन। लास्ट बात, एक किताब है अंग्रेजी में एलिस इन वंडरलैंड, जिसमें छोटी 7 साल की बच्ची है एलिस, वो खरगोश का पीछे करते करते एक बिल में चली जाती है और एक स्वप्न जगत में प्रवेश करती है। लेविस कैरोल की लिखी हुई ये किताब बहुत बहुत प्रसिद्ध है, उस पर बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे कॉमिक्स, बहुत सारी मूवीज, बच्चों की कहानी है। तो छोटी सी एलिस जो है वो स्वप्न लोक में पहुँचती है, और वहाँ जाने के बाद उसे भूख बहुत लगी है, क्योंकि सुबह से आई हुई है, और उसे उसकी मुलाकात एक रानी से होती है, और वो रानी को देखती है, रानी दूर खड़ी है उधर और उसके पेड़ के पास, और रानी के पास बहुत सारे थाल है जिसमें भोजन है। तो एलिस को भूख लगी है, एलिस चलती है, भाग रही है भाग रही है भाग रही है, पर दोपहर हो गई, वो फासला उसने उतना के उतना ही है, वो रानी से कहती है, क्वीन व्हाट इज दिस, मैं कब से चल रही हूँ। तो रानी उसको समझाती है, तुम्हारी दौड़ कम है, थोड़ी तेज चलो और भागो और भागो। एलिस भागती है भागती है भागती है भागती है, शाम हो जाती है, पर वो फासला उतना के उतना ही एलिस थक कर गिर पड़ती है और उस रानी से कहती है, ये कैसी दुनिया है तुम्हारी जहां पर ये फासला तो कम होता ही नहीं। वो रानी कहती है, ये वैसी ही दुनिया जिस दुनिया से तुम आई हो, यहां कोई कहीं नहीं पहुंचता, केवल भागते रहते हैं बस, व्यर्थ सपनों के पीछे, संसार के पीछे। जैसे तुम्हारी दुनिया में जीवन भर व्यक्ति क्या करते रहता है, भागता ही रहता है, मिलता है उस कुछ 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 नहीं। हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है अभी, उसकी दादी कल थी, तो उसकी दादी का एक नियम है कि वो डायरी है उसमें राम 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 लिखती रहती है दिन रात। उसकी डायरी हमने देखी, इतनी डायरी है, बिना चश्मे के एकदम छोटे छोटे कॉलम है डायरी में, 15 कॉलम होंगे ऐसे, इतनू इतनू सा, और उसमें एक छोटे छोटे बॉक्स में वो दिन रात लिखती रहती है। उससे हमने पूछा, ये क्यों करती है, बोलती यही तो कमाई है, बस यही तो जाएगा और तो कुछ जाना है नहीं, छोटे छोटे इसमें राम 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 लिखती रहती है, दिन रात लिखती रहती है। तो इस दुनिया में कहीं कोई नहीं पूछता है, केवल भागते रहते, पहुंचता है केवल हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ चलते, और कुछ भी नहीं। हमने किस किस को सुख दिया, कितना सुख दिया, नहीं तो एक दिन तो शरीर गया। आज की कविता
ओम शांति, टाइटल है पेपर टाइगर का खौफ। पेपर टाइगर क्या है, बस दिखावा एक, गरजता बहुत है पर अंदर से फेक। डरते हैं लोग इससे जैसे हो असली शेरनी, पर छूने पे बिखर जाए जैसे कागज की कहानी। ब्राह्मण बच्चे भी कभी भूल जाते अपनी शान, माया के डर से हिल जाते, टूट जाता उनका मान। पर याद करो दादियों को जिन्हें कुछ न रोका, उन्होंने हर तूफान को कहा ये तो पेपर टाइगर है धोखा। दादी प्रकाशमणि के निश्चय से, दादी जानकी के साहस से हर संकट रुई बन जाता जब उनका विश्वास था बाबा के साथ खड़ा। मुरली बन जाए ढाल, याद बने तलवार, इस रूहानी शस्त्र से जीत ले संसार। बाबा के फरिश्ते जब उड़ान भर जाते, पेपर टाइगर के पैर खुद हिल जाते। कागज के शेर तो जल जाएंगे, माया के जाल सब कट जाएंगे, हम है वह रूहानी शेर सदा निर्भय, शिव बाबा की शक्ति से निश्चित हमारी विजय। नव दुर्गा की शक्ति भी यह बताए, शेर पर सवारी करके माया को हराए। बाबा के बच्चे भी वह किरदार निभाते, साहस और निश्चय से अंधेरा मिटाए। तो ना डर कागज के शेर से, ना झुक माया के पहर से, जब शिव बाबा हमारे साथ है तो विजय हमारी सौगात है। थैंक यू ओम शांति।
मन मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्। प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनं। तोड़ दे नींद की जंजीरे, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरे, थाम ले तप की मशाले। पाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप काना कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। ना सो ना लेट हो जा, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी तूठे तो विश्व सवरेगा,
जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार,
ना रुक